ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीयम उवाच अहो अमीषां व्यसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोह यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यम् स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम् श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री यम उवाच श्री यमराज ने कहा अहो ओहो अमीषां इनका वयसा उम्र से अधिकानाम जिनकी आयु अधिक है उनका विपश्यताम प्रतिदिन देखते हुए लोक विधिम प्रकृति के नियम को कि हर कोई मरता है विमोह मोह यत्र जहाँ से आगत आया हुआ तत्र वहाँ गतम लौटा हुआ मनुष्यम मनुष्य स्वयं स्वयं सधर्मा स्वभाव में समान मरने के लिए उद्यत अपि यद्यपि सोचन्ति विलाप करते हैं अपार्थम व्यर्थ ही। अनुवाद श्री यमराज ने कहा ओह यह कितना आश्चर्यजनक है ये लोग जो आयु में मुझसे बड़े हैं इन्हें अच्छी तरह अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते और मरते हैं इस तरह उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है तो भी वे मोहग्रस्त रहते हैं बद्ध जीव किसी अज्ञान स्थान से आते हैं और मृत्यु के बाद उसी अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता तो यह जानते हुए भी वे व्यर्थ शोक क्यों करते हैं तात्पर्य भगवद गीता 2.28 में भगवान कहते हैं अव्यक्तादिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना सारे सृजित जीव प्रारंभ में अप्रकट रहते हैं बीच में प्रकट होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अप्रकट हो जाते हैं अतएव शोक करने की क्या आवश्यकता है यह मानते हुए कि दार्शनिकों की दो श्रेणियां हैं जिनमें से एक वे जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं और दूसरे नहीं करते इन दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं है वैदिक वाङ्मय के अनुयायी आत्मा के अस्तित्व को न विश्वास करने वालों को नास्तिक कहते हैं फिर भी यदि हम तर्क के लिए नास्तिकवाद सिद्धांत को मान ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं होता आत्मा के पृथक अस्तित्व के अलावा सृष्टि के पूर्व भौतिक तत्व अव्यक्त रहते हैं किंतु और व्यक्तता की इस सूक्ष्म दशा से ही व्यक्तता आती है। जिस तरह शून्य से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियां होती है। उदाहरणार्थ एक विशाल गगनचुंबी प्रासाद पृथ्वी से प्रकट होता है, इसे ध्वस्त कर देने पर वह पुनः अप्रकट हो जाता है और अंततः परमाणुओं के रूप में रह जाता है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं, यह अंतर है। तो प्रलय होने या अप्रकट होने पर शोक करने का क्या लाभ है? अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं खोती नहीं। प्रारंभ में तथा अंत में इन दोनों ही अवस्थाओं में सारे तत्व अव्यक्त रहते हैं और इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता में दिए गए वैदिक निर्णय को स्वीकार करें, अंतमंत इमे देहा, कि ये भौतिक शरीर काल क्रम से विनष्ट हो जाएंगे, नित्य संयुक्ता शरीर न किंतु आत्मा नित्य है, तो हमें यह स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र की भांति है। तो फिर वस्त्र परिवर्तन के लिए शोक कैसा? नित्य आत्मा के आगे भौतिक शरीर का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, यह स्वप्न जैसा है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की तरह रथ में आसीन हो सकते हैं, किंतु जगने पर हम अपने को न तो आकाश में उड़ते न रथ पर आसीन पाते हैं। वैदिक ज्ञान भौतिक देह के अस्तित्व के आधार पर आत्म साक्षात्कार पर बल देता है। अतएव दोनों ही तरह से, चाहे कोई आत्मा के अस्तित्व को मानता हो या न मानता हो, शरीर की क्षति के लिए शोक करना व्यर्थ है। महाभारत में कहा गया है, अदर्शनात् इहायात पुनश्च दर्शनम गतः। इस कथन से नास्तिक विज्ञानियों के सिद्धांत का समर्थन होता है कि माता के गर्भ में शिशु के प्राण नहीं होते और वह एक पिंड जैसा रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि शल्य क्रिया द्वारा किसी पदार्थ के पिंड को बाहर निकाल लिया जाए, गर्भपात कराया जाए, तो जीव की हत्या नहीं होती। शिशु का शरीर तो ट्यूमर अर्बुद की भांति होता है, और यदि इस ट्यूमर की शल्य क्रिया द्वारा काट कर निकाल लिया जाए और फेंक दिया जाए, तो इससे कोई पाप नहीं होता। यही तर्क राजा तथा रानियों के प्रसंग में भी दिया जा सकता है। राजा का शरीर अव्यक्त स्रोत से व्यक्त हुआ था और अब वह व्यक्त से अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो गया था। चूंकि व्यक्तता अभिव्यक्ति केवल दो अव्यक्तताओं के मध्य में विद्यमान रहती है, तो फिर कोई इस अंतराल में प्रकट हुए शरीर के लिए क्यों रोए? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत लंबा प्रपट आप लोगों ने श्रवण किया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणीं श्रीचैतन्येश्वरं नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आवाज पीछे ठीक से जा रहा है? सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे जितने उपस्थित वैष्णव और वैष्णवीगण और जो इंटरनेट के माध्यम से जो कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, और यहाँ पे अदृश्य रूप से जो देवतागण देवीगण उपस्थित है उनके श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ, जो मुझ अधम पतित पे कृपा करें ताकि हम इस श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ता है उसको आचार्यों की वाणी को एज इट इज यथावत रूप से पूर्ववर्ती आचार्यों के दृष्टि को देखते हुए उनके भाव को आप सब भक्तों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर सकूँ, और मेरे मुख से ऐसी वाणी का प्रयोग न हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत न हो। हरे कृष्णा। तो गत हम कई महीनों से इस प्रसंग को सुनते आ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का सातवां कैंटो का दूसरा अध्याय का यह आज 37 नंबर श्लोक है। इसमें आत्मा के ज्ञान को बता रहे थे कल तक। कौन बता रहे थे? हिरण्यकशिपु जी। हिरण्यकशिपु जी का लंबा प्रवचन जब खत्म हो गया तो ये प्रवचन में जो था प्रवचन ये इस तथ्य पे दे रहे थे, जो उनका जो भाई का शरीर छूट गया था युद्ध स्थल में, तो अपने परिवार जनों को वो समझाना चाह रहे थे, जो शोक संतप्त थे उसकी शोकावस्था को दूर करने के लिए इतना भारी प्रवचन आत्मा के ज्ञान को बहुत तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। अब जब कोई समझाने का प्रयास करता है तो कोई पूर्ववर्ती जो इतिहास है उससे कोई दृष्टि माने रख करके ऐसा कोई इतिहास प्रस्तुत करता है, जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ इसका कोई साक्ष्य इतिहास में कभी हुआ है? आप सब भक्तगण भागवतम की महिमा को जब आप श्रवण करते हैं तो श्रील व्यासदेव जब भागवतम की महिमा अगाध बता दिए, ब्रह्मा जी को लगा भागवतम की इतनी महिमा है, जब तराजू पे उन्होंने अपने लोक में सत्यलोक में तौले सारे जप तप ध्यान पूजा प्रतिष्ठा जितना दान तपस्या है सबको एक तराजू के पलड़े पे रखा गया और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम को रखा गया तो श्रीमद् भागवतम जमीन पे और ये सब ऊपर। इतना भारी जो है श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से पाठ करने से इतना ज्यादा फायदा है तो लोग इसको विश्वास करने पे विश्वास नहीं करते हैं। तो इसी को साक्ष्य देने के लिए फिर श्रील व्यासदेव आत्मदेव ब्राह्मण की कथा बताते हैं वहां पे, जो इतिहास में ऐसा श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने मात्र से भगवान के लोक को गए हैं, स्वयं भगवान विमान लेकर के भगवान के दूत विमान लेकर के आए और उनको लेकर के गए। ये इसलिए साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ता है ताकि जनता इसको समझ पाए। जब कोर्ट में कोई केस वकील लड़ता है तो क्या करता है? पूर्वगत जो कोई रेफरेंस देते हैं, जो कोई रेफरेंस आया है पूर्व से आचार्यों का, माने उनके जो कोई वकील ऐसा केस को लड़े हैं तो उस आचार्य माने माने उनके बातों को यथावत रूप से रखते हुए और प्रतिपाद्य विषय को रखते हुए यहाँ पर मैं प्रस्तुत करते हैं, तो फिर वो केस जीत जाते हैं। यहाँ पर मैं यही सेम फिलॉसफी हिरण्यकश्यपु जी अपने प्रवचन में रखते हैं, रखे और ये पुराने इतिहास बताए जो उसीनर राज्य एक क्षेत्र है जहाँ पे सुयज्ञ नाम का बहुत बड़ा राजा हुए, जो युद्ध में लड़ते लड़ते पराक्रम इतनी ज्यादा पराक्रम था और युद्ध में लड़ते लड़ते युद्ध स्थल में ही अपना शरीर छोड़ दिए और उसकी सारी रानियां, कई रानियां थी, सारी रानियां आकर के युद्ध स्थल में ही अपना पूरा का पूरा घेर करके जो है विलाप करने लग गए। अब इतना ज्यादा विलाप करने लग गए जो स्वयं यमराज जी को अपना लोक छोड़ करके यहां पे आना पड़ा। ये प्रथम, आप सब भक्त तो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, ये प्रथम बात होगा जो यमराज जी किसी शोक संतप्त कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दिया हो और उसके परिवार जन उसको समझाने, परिवार जन को जो है शोक संतप्त अवस्था से हटाने के लिए कोई समझाने का जो प्रयास कर रहा हो और वो नहीं समझ पा रहे, उनका रोना इतना ज्यादा हृदय विदारक रोदन था जिसको सुनकर के स्वयं यमराज जी अपने लोक को छोड़ करके इस धरती पे आ गए। ये पहला घटना होगा, हमें तो नहीं लग रहा है जो भागवतम में और कहीं वर्णन, जो यमराज जी किसी को समझाने के लिए यहां पर मैं आए हूं जो आप भैया शोक मत करो, ये तो दुनिया की यही रीति है। यमराज जी, ये हमें लग रहा है ये प्रथम घटना होगा। तो यमराज जी स्वयं एक छोटे से बालक के रूप में यहां पर मैं पधारते हैं। आप सब भक्तगण जानते हैं जो यमराज जी है कौन, स्वयं 12 महाजन, भगवान के जो 12 महाजन है ना, महाजन मीन्स क्या होता है, ये बनिया वाला महाजन नहीं, महाजनों ये गता से महाजन वो जो भगवान को तत्वतः जानते हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर्वैयास की बयम, बयम जो यहाँ पे है ना, क्योंकि ये स्वयं यमराज ये श्लोक 6.3.20 भागवतम ये बताते हैं जो बयम, बयम वो अपने लिए प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं ये जो 12 महाजन है ना, ये भागवत माने भगवान के भगवत्ता को जानते हैं, भगवान को वो थोड़ा सा जानते हैं और तो कोई भगवान को जान नहीं सकते, इसलिए वो थोड़ा सा जानते हैं। तो ये यमराज जी स्वयं जो भगवान के एकदम परम वैष्णव भक्त हैं, वो स्वयं समझाने के लिए एक बच्चा छोटा सा बालक का रूप लेकर के आ गए हैं। अब बालक का ही रूप क्यों लिए, वो वयोवृद्ध में जो अवस्था था उस अवस्था में आते, तो इसके प्रति एक लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि बालक जब किसी सभा में आकर के जब बोलना प्रारंभ करता है और उसकी वाणी आकर्षक होती है तो सारे लोग अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर के उस बातों को सुनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बालक में वो अट्रैक्शन होता है उनके बातों की, इतना अट्रैक्शन। तो ये यमराज जी इसीलिए इस बात को समझाने के लिए व्यथित परिवार को, जनों को मैंने समझाने के लिए जो आप लोग इसको शोक मत करो, इसी को समझाने के लिए यमराज जी यहाँ पर मैं आए हैं। तो अभी तक माने आज से पहले तक 36 नंबर के श्लोक तक जो है ना हिरण्यकश्यपु जी का प्रवचन था, लेकिन आज से 37 नंबर श्लोक से लेकर के और आगे 57 नंबर श्लोक, यानी कि टोटल 21 श्लोक में अभी यमराज जी बोलेंगे और यमराज जी उस सारे प्रतिपाद्य विषय को बताएंगे। सिर्फ एक ही फिलॉसफी है, आत्मा का ज्ञान, आत्मा के ज्ञान। अगर आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को हो जाए ना, जो मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, इसको ज्ञान अगर हो जाए और इसको व्यवहार में अगर ला लें तो जीवन का, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा परफेक्शन है, जो ना सार्थकता है, वो इससे हो जाएगा। इसलिए भगवद गीता स्वयं भगवान 700 श्लोक भगवद गीता में बोले हैं, उसमें से 545 श्लोक भगवद गीता में भगवान ने बोले हैं। तो भगवद गीता का 700 श्लोक जो 18 अध्याय में बटा हुआ है, 18 अध्याय में 3 प्रतिपाद्य विषय है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग शुरू का 6 अध्याय, और ज्ञान योग लास्ट के छह अध्याय और बीच का जो छह अध्याय है, छठा अध्याय से माने सातवां अध्याय से लेकर के बारहवां अध्याय तक, वो भक्ति योग का वर्णन है। लेकिन भगवद गीता के दूसरा अध्याय जो है ना, जिसमें आत्मा का ज्ञान है, उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों का प्रतिपाद्य, जो भगवद गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो आत्मा का माने विषय है, कोई भी जो ग्रंथ लिखा जाता है, ग्रंथ जब भगवान देते हैं उसका एक प्रतिपाद्य विषय होता है। हम भी कोई निबंध लिखते हैं, कोई भी चीज व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसका एक प्रतिपाद्य, एक थीम पॉइंट होता है, जिस विषय पे पूरा का पूरा क्लाइमेट चलता रहता है, नाटक जो भी चलता रहता है, क्लाइमेट चलता रहता है। तो ये भगवद गीता का जो क्लाइमेट जो चल रहा है, उसका प्रतिपाद्य विषय यही तीन है, और ये तीनों का समावेश भगवद गीता के दूसरे ही अध्याय में भगवान क्यों रख रहे हैं? 18वां अध्याय में रखते आत्मा का ज्ञान, क्योंकि भगवान बताना चाह रहे हैं, इस बात को प्रदर्शित करना चाहिए, आत्मा का ज्ञान मनुष्य के लिए समझना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई आत्मा का ज्ञान नहीं समझेगा और सारी ज्ञान प्राप्त भी कर लेना, तो जीवन में सार्थकता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्मा का फिलॉसफी बड़ा ही, कहते हैं इसको कॉन्फिडेंशियल मैसेज, माने गुरु विषय है, इसको समझना मुश्किल भी है, और समझ भी गया तो उसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी तो श्रील प्रभुपाद जी अपने सारे लेख में, सारे प्रवचन में, सारे जितने भी बुक्स हैं, सब में आत्मा का ज्ञान दिए हैं, जो हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। इस चीज को इतना ज्यादा बल इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसी पे संपूर्ण जगत जो है ये टिका हुआ है। तो भागवत गीता में अर्जुन जी को भगवान ये मोह से हटाने के लिए ये भागवत गीता का ज्ञान दिए, ये आत्मा का ज्ञान दिए, जो यहां पर मैं आत्मा के शरीर से संबंधित, शरीर और शरीर का भेद बता रहे हैं। तो ये हम सब देख रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय में ये आत्मा का ज्ञान अर्जुन जी को दिया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन क्या है, मोहग्रस्त है, ये अपने सगा संबंधी को सबको अपना समझ रहे हैं, देह से संबंधित जो सारे के सारे जो संबंध है ना, उसी को वो मेन चीज मांग रहे हैं। देह और शरीर में आप सब भक्त अंदर समझते हैं, देह, देह मतलब होता है कवर, कवर अंग्रेजी शब्द है आवृत। हम सब आत्मा हैं, तो ये आत्मा का जो एक कवर है देह, तो ये हम देह मिला है। देह कई तरह के होते हैं, अभी हम मनुष्य के देह में है, मच्छर के देह में, कुत्ता के देह में, बंदर बिल्ली किसी के देह में आ सकते हैं, तो इसको देह बोलते हैं। और शरीर क्या होता है, संसरति इति संसार, माने ये जो समझना, संसरण करता है शरीर जो है, ये अपना वृद्धि करता है, और शरीर हर वक्त जो है इसका परिवर्तन, हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। तो ये शरीर और देह में अंतर है, और ये देह धारण करके शरीर, माने ये मोह, शरीर से रिलेटेड जो भी संबंध है ये यहाँ पे क्षण भंगुर है। इसको श्रील प्रभुपाद जी स्किन डिजीज बोलते हैं, माने चर्म रोग। इस शरीर के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए और उस शरीर के द्वारा, उस बच्चे से लगाव, इस शरीर के द्वारा धन अर्जन किया जाता है, उस धन से इतना ज्यादा लगाव, इस शरीर को जो पद मान प्रतिष्ठा मिलता है उससे गौरवान्वित होना, ये सब सारे के सारे किस पे है, शरीर पे है। तो प्रभुपाद जी इसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवद गीता के सेकंड चैप्टर को जो बता रहे हैं, जो ये जो सेकंड चैप्टर जो है ये बड़ा ही पावरफुल है, इसलिए इसको जीवन में उतारने के लिए जो मनुष्य का जो शरीर मिला है, जो बड़ा ही दुर्लभ शरीर, बहुत ही मूल्यवान शरीर है, कोई भी शरीर इतना मूल्यवान नहीं है जितना कि ये मनुष्य का शरीर, क्योंकि यही एक मनुष्य शरीर है, वो एक ऐसा जहाज है, ऐसा बोट है, जिस जहाज पे चढ़ के हम इस भवसागर रूपी जो ये सागर है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी जो ये भवसागर है, इसको हम पार कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ही, मनुष्य के शरीर में ही भगवान वो बुद्धि दिए हैं, जिससे भगवान के जो मनुष्य के लिए जो प्रतिपाद्य विषय किया है भक्ति करना भगवान का, उसको संपादित करके इस भवसागर को पार करके हम भगवान के लोक को जा सकते हैं। तो किसी भी चीज को करने के लिए, तो यहां पे अर्जुन क्या था भागवत गीता में अर्जुन क्या था, एकदम इस जो सारे लोगों को अपने सगा संबंधी को देखा तो उसका गांडीव सरकने लगा। वो युद्ध करने के लिए एक क्षत्रिय था, इतना बड़ा योद्धा, जो गांडीवधारी अर्जुन से बड़ा गांडीवधारी कोई था नहीं। तो इतनी वेग से बाण चलाते थे, ये सब अवस्था जो सबसे नंबर वन का गांडीवधारी अर्जुन है, लेकिन उनकी स्थिति इन सब चीजों को देख करके, इतना रिलेशंस को देख करके जो है वो व्यथित होकर के वो उनके हाथ से जो है ना धनुष सरक गया। अब धनुष सरक गया मोह में, तो मोह से जो ग्रसित जीव आत्मा है, जो ग्रसित हो जाता है तो फिर वो कुछ करने लायक नहीं हो जाता है, क्योंकि वो शरीर के लेवल पे सोचता रहता है। तो ये कह रहे हैं ये ऐसा होता क्यों है, तो कह रहे हैं देहात्म बुद्धि के कारण, देह में आत्मा का बुद्धि या कृपणता, बस कृपण जो मैंने यहां पर प्रभुपाद जी उपयोग किए हैं, कृपण, कृपण मतलब कंजूस, उसका हिंदी में मीनिंग हम बता सकते हैं, जो कंजूस कृपण का मतलब क्या हम समझे, जो उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.10 में बताए हैं, यो वाये दद क्षरम गार्ग्य विदित्वा श्यामलोकात् प्रेति स कृपण, कह रहे देहात्म बुद्धि में जो अपना सारा का सारा समय अपने परिवारजनों के साथ बिताने में, समय को परिवारजनों को समाज से देश से रिलेटेड सारी चीजों में अपना मूल्यवान समय व्यक्ति जब व्यतीत कर देता है तो उसी व्यक्ति को हम कृपण बोलते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रीक्षामि त्वाम धर्म सम्मूर्चेता यत् श्रेयस्यानिस तितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम् साधि माम त्वाम प्रपन्नम्। कह रहे हैं आत्मा का ज्ञान कैसे मिलेगा, तो जब अर्जुन जो पूरा व्यथित थे, कुछ काम नहीं कर रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण से बोले हैं जो मेरा दिमाग अब सही ठिकाने पे नहीं है, मेरे लिए क्या सही चीज है इसका ज्ञान मुझे दीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो जब हम शरणागत होते हैं ना अपने गुरु के समक्ष या भगवान के समक्ष, तो फिर भगवान, जब अर्जुन शरणागत होगे जो मैं आपका शरण ग्रहण करता हूं, आप मुझे गाइड करो मुझे क्या करना है, तो जब भगवान शरणागत होगे, तो इतने देर भगवान भगवान थे, अब भगवान गुरु के पद पे आसीन होगे। तो गुरु का पद क्या होता है, गुरु शिष्य को डांट भी सकता है, मार भी सकते हैं उनको समझाने के क्रम में। तो अब इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक में भगवान यहाँ पे जो है भगवान का शरण अर्जुन लेते हैं। इस अध्याय के अंदर में 71 श्लोक है जिसमें सारे के सारे में आत्मा के बारे में ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा के बारे में ज्ञान समझना, क्योंकि जो मनुष्य है जो अपने जीवन के समस्याओं को, उलझनों को, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैपी कष्ट आदि भौतिक कष्ट और आदि आत्मिक कष्ट, ये जो सात प्रकार के जो डिफिकल्टीज है ना, यही सबसे बड़ा यहाँ का जो है, इसी को डिफीट करना मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अगर हम इसको डिफीट करने में अपने समय को नहीं लगाते हैं तो हमारा ये मूल्यवान मनुष्य शरीर निरर्थक कुकर सुकर, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखे हैं, जो डॉग्स एंड हॉग्स की तरह जो हम अपने शरीर को व्यतीत करके और हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं। इसलिए इस मूल्यवान शरीर को, इस जीवन को कह रहे हैं जो कृपण वह व्यक्ति है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग करके दूसरे लोक को चले जाता है। यह मनुष्य जीवन केवल और केवल किस काम के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए, केवल और केवल एक ही काम है भक्ति करना, और दूसरे काम के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला हुआ है। इसलिए इस चीज को, इस बात को बड़ा ही गहनता से जब हम समझेंगे तभी हम भगवान की भक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो हम इस स्किन डिजीज चर्म रोग में फंसे रह जाएंगे। और चर्म रोग से रिलेटेड जितना भी चीज हम करते रहेंगे ना, किसी भी चीज के प्रति अनुराग होना, अनुराग होना और लोगों को ये बात होता है, जो परिवार का जो एक मुखिया होता है ना, उसको ये बात मन में होता है जो मैं इस परिवार में अगर नहीं रहा तो पता नहीं इस परिवार का भरण पोषण होगा या नहीं, मैं ही हूं, कर्ता अहम इति मन्यते। तो यही जो अनुराग है ना, ये जो इच्छा से बंधा हुआ जो व्यक्ति है ना, तो वही मैं अपने परिवार की रक्षा कर रहा हूं, इनको मृत्यु से बचा रहा हूं, यही इस व्यक्ति का सबसे बड़ा उलझन का कारण होता है। इस धरती पे बार बार जो व्यक्ति आता है, इस जगत में आता है, यही एक जो इच्छा है जो मैं इसको मृत्यु से बचा लूंगा, इसलिए वो बार बार जो है ना मोह के कारण बार बार इस जगत में जन्म लेता है। वो व्यक्ति नहीं समझ पाता है, जो यहां पे आने वाले हर प्राणी जो है ना मरता है, लेकिन वो करता हम इति मन्यते, इस तरह का वो सोच करके बैठता है। तो श्रील गुरुदेव हिज होलीनेस राधा गोविंददास गोस्वामी महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे, जो अगर कोई व्यक्ति को इस तरह का भाव हो जाए ना, तो एक बार मर करके देखना चाहिए, कृत्रिम रूप से मर करके देखना चाहिए। मर करके देखना मीन्स कहता है, जो उसको फोन अगर रखा है तो फोन को स्विच ऑफ करके उसको वन में यानी कि वृंदावन में आकर के माने भाग जाना चाहिए घर से, किसी को बता करके नहीं। जब भाग जाए घर में तो उनसे जो बहुत प्यारा है, बेटा है, सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, बच्चे हैं, तो वो उस सब मर जाएंगे, क्या करेंगे यही सोच करके, तो वो 15 दिन 1 महीना यहाँ आराम से भजन करे और क्या हुआ उसके बारे में कोई खोज खबर ना ले। और फिर 1 महीना के बाद जब वो घर जाकर के देखे तो देखे जो अपनी स्थिति माने क्या स्थिति है, तो एज इट इज सारा का सारे परिवार कितना सुंदर, मैं नहीं था तो उसे अच्छी तरीके से हमारे घर परिवार के बच्चे हमारी पत्नियां जो है जो रह रहे हैं और सारा का सारा काम को प्रतिपादित कर रहे हैं। तो मर करके देखना, ये लोगों को अहंकार हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये देह आत्मा जो है ना ये देह समझ लेता है, शरीर समझ लेता है अपने आप को, इसी कारण से उसका जो है ना सबसे बड़ा ये डिफीटिंग पॉइंट होता है। ये इसमें लिखे हैं लोक विधिम विमोह, तो लोक विधिम का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति के नियम है, प्रभुपाद जी यहां पे लिखे हैं प्रकृति के नियम लोक विधिम, यानी कि हर कोई मरता है, यहां पे जो भी आने वाला प्राणी है हर कोई मरता है, हर कोई व्यक्ति यहां पे मरता है, यहां तक ब्रह्मा जी बताते हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के एक चींटी तक इस जगत में आया हुआ प्राणी हर कोई मरता है। यही हिरण्यकशिपु का जो प्रवचन आज कल खत्म हुआ, यही हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की इतनी घनघोर तपस्या करी, जो भागवतम में ये वर्णन आता है, जो हिरण्यकशिपु जो तपस्या किया इससे बड़ा तपस्या आज तक किसी ने नहीं किया, करे ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टे, और एक अंगूठा के ठिगनी पे खड़े होकर के, एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के ऊर्ध्वबाहु, कभी करके प्रयास करना देखना, नहीं होगा, ऊर्ध्वबाहु दोनों हाथ ऊपर और नभो दृष्टि माने आकाश की तरफ देख रहा है हजारों वर्ष तक, 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 1 घंटा के लिए नहीं। वो ब्रह्मा जी की जब इतनी तपस्या की, किस लिए, अमरता का वरदान लेने के लिए, जो मैं न मरूं इस जगत में। तो ब्रह्मा जी वहां पर मैं बताते हैं, जो मैं खुद मरता हूं तो मैं आपको कैसे दे सकता वरदान। तो ये जो व्यक्ति जो ये जो देहात में बुद्धि, जो ये हिरण्यकशिपु के बारे में उस दिन महाराज जी बता रहे थे ना, जो भक्ति शास्त्री करके आया होगा, बहुत सारे वेद पाठ बड़े ज्ञान हो ये इस हिरण्यकशिपु को था, तभी तो इतना बड़ा प्रवचन कर रहे हैं और इस भागवतम के अंदर में प्रवचन रखा गया है। भागवतम में कोई ऐरे गैरे नथ खैरे की बातें नहीं रखा जाता है, भागवतम वही प्रतिपाद विषय को रखते हैं जो रेलिवेंट है, इंपोर्टेंट है मनुष्य जीवन के लिए और भगवान से रिलेटेड है। तो ये प्रवचन इतना इंपोर्टेंट है, आत्मा का ज्ञान जिसको यहां पे रखा गया है, तो वो हिरण्यकशिपु इतना बड़ा ज्ञानी जो अभी देहात्म बुद्धि में वो भी फंस करके क्या करे, जो मुझे आत्मा का वरदान दीजिए, तो आत्मा का वरदान तो मिलना नहीं है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य यहां पे प्रभुपाद जी व्यक्त करते हैं, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य जनक क्या चीज होता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं, यहां लोग यहां आकर के जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन फिर भी जन्म लिया मरा फिर भी लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, देख रहे हैं हमारे सगा समझे हमारे जो दादाजी थे, दादाजी चले गए, दादी जी चले गए, उनके नीचे वाले सब ऐसे दादाजी के दादाजी सब चले गए धीरे धीरे, क्या कोई है? श्रील प्रभुपाद जी जो ये अम्बरीश, ये क्या बोले अल्बर्ट फोर्ड ना, क्या नाम है अम्बरीश महाराज के, क्या नाम था अम्बरीश प्रभु के नाम क्या है, और उनके पिताजी का नाम फोर्ड समथिंग कुछ है। तो श्रील प्रभुपाद जी को मिलने के लिए जब पहली बार ये अम्बरीश प्रभु जो फोर्ड जी आए, जो इस इतने बड़े कंपनी का मालिक, तो वो कह रहे वेयर इज योर दादाजी बोलते हैं ना, वेयर इज ग्रैंडफादर माने उनका जो नाम था, वेयर इज अभी कहां है वो। इसी बात को प्रभावित होकर के प्रभुपाद जी के शरण में ये अम्बरीश प्रभु आए, जो सबसे बड़ा डोनर है जो माने इस कौन के लिए। तो कह रहे वो अभी कहां है, जो हमारे पूर्ववर्ती जो भी जितने सारे जो हमारे माने दादा परदादा वो सब कहां है, ये सब के सब आकर के चले गए। और ये कितना बड़ा आश्चर्य है, सब रोज देखते हैं श्मशान घाट में लोग जाते हैं और व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उसको दाह संस्कार में भी जाता है, राम नाम सत्य है सबका यही गत है, पढ़ भी लेते हैं लेकिन इसका अनुभव नहीं करते। वो घर में आकर के वही प्लानिंग करता है हमारा अगला एक सेकंड हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या किसी की गारंटी है, नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरे जीवन का प्लानिंग करते हैं। तो इससे बड़ा आश्चर्य भला हो सकता है क्या, एक ज्ञानी वैज्ञानिक दार्शनिक बड़ा बड़ा व्यक्ति बड़ा बड़ा फिलोसफर इतना बड़ा सालों का सालों पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजना बनाता है, पूरा का पूरा प्लानिंग करता है, क्योंकि वो देहात में बुद्धि में है। देहात में बुद्धि में जो व्यक्ति होता है वो इस तरह का प्लानिंग करता है। तो कह रहा है एक कसाई घर है जहां पर मैं बकरा बंधा हुआ है, बहुत सारे बकरा, और वो बकरा को हरी हरी घास जो खाने के लिए दिया है, अब बड़ी चाव से वो घास खा रही है बकरा चाव से घास खा रहा है, और एक एक करके उसमें से कसाई ले जा रहा है, और वहीं पे कसाई घर है और उस बकरी के सामने में उसको गला काट रहा है, और वो बकरी फिर भी जो बकरी अभी बचा हुआ है बड़ी आराम से घास खाता रहता है, घास खाती रहती रहे। तब मेरे सामने में हमारे सामने में लोग मर मर के जा रहे हैं, वो बकरी की तरह हम हैं, जो हम देख रहे हैं हमारे सामने में जो दूसरा बकरी को गला काटा जा रहा है, हमारा नंबर अगला हो सकता है लेकिन हमें टेंशन नहीं है इसका। अगर ये बात मन में हो जाए हमारा अगला सेकंड हम जिंदा रहे या न रहे, अभी हमारे हाथ में माला का जो वो मन का है जहां पे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगले एक सेकंड के बाद क्या हमारे मुंह से जिह्वा से ये हरे कृष्ण निकलेगा? ये जो तत्परता ये जो तल्लीनता हो जाएगा तो हम कितनी आनंद से उस नाम को लेंगे, जो कितनी बड़ी व्यग्रता होगी जो हमारा अगला क्षण नहीं होगा। यही हमारे पास ये टाइम है, ये लिमिटेड टाइम है जिसमें हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इतनी तत्परता तल्लीनता से जब हम भगवान को लेंगे, जब इस मर्त जगत में देख रहे हैं सभी कोई मर रहे हैं लेकिन हम बेफिक्र होकर के सो रहे हैं, तान चदरिया परे रहो क्या कछ मछिया कछ मच करे, जो बड़े आराम से हम नींद ले रहे हैं सो रहे हैं, जो हमको यमराज जी छोड़ देंगे। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं जो जब यमराज जी की जब समय होता है ना तो वो एक सेकंड भी माने सोचने का मौका नहीं देता है, जो हमारा ये काम छूट गया है ये काम बचा है एक सेकंड सोचने का मौका नहीं देगा। जितना सोचना है भगवान के नाम के विषय में, भगवान के रूप गुण लीला के विषय में, यही में सोचना पड़ेगा, और इस जिंदगी को भगवान की भक्ति में लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा जो है जो ये जीवन जो मनुष्य का जो जीवन हमें ये जो क्या बोलते हैं ये चोला जो मैंने ये जो वस्त्र मिला है ना किराए का घर, इस किराए के घर को जो हम फिर से नौ किराए के घर में आए, हम अपने परमानेंट हाउस जो हमारा जो सनातन जो हमारा घर है उस घर को हम चले जाएं तो हमारा फिर उद्धार हो जाएगा। यही प्रश्न पूछा गया था महाभारत के अंदर में, महाभारत के वन पर्व में 313.116 नंबर पे श्लोक है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषा अस्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अतः परम्। ये यक्ष महाराज पूछे थे, यक्ष जो सारे जो पांडव जब वन प्रदेश में अपना वनवास काट रहे थे, तो उनको जब पानी पीने का बहुत ज्यादा प्यास लगा, सारे लोग पानी पी करके उमर गए, माने शरीर छोड़ दिए। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज देखे सारे के सारे इस तट पे, इस सरोवर में आखिर है क्या, जो इस सारी जो गदाधारी भीम इतने जो माने क्या कोई व्यक्ति मर सक माने भीम को कोई मार सकता है क्या, ये जो गदा मैंने अर्जुन जो है इससे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है, ये यहाँ पे मैं मरा हुआ व्यक्ति है। तब उनको आश्चर्य बने, तब उनको मन में हुआ यहाँ तो कुछ न कुछ माजरा है। तो यक्ष जी उनसे प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज धर्मराज जी से, जो इस जगत का किम आश्चर्यम, इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उनसे कई सारे प्रश्न पूछा जाता है, उसमें से एक ये प्रश्न है किम आश्चर्यम। तो यही इस श्लोक को बोलते हैं, जो तथाकथित जो लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति को मरना है, परंतु फिर भी वो अपने को मृत्यु रहित सोच करके मान करके यहां पर मैं स्वतंत्र समझता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है इस जगत में। लोग मर रहे हैं हमारे सामने में, लेकिन हम इसका देख करके भी हम अनदेखा कर रहे हैं इस शरीर को ठीक ठाक करने में पता नहीं हम कितना फेयर एंड लवली यूज करके फेंक दिए होंगे, कितना रुपया खर्चा कर दिए होंगे इस शरीर की माने इतना देखभाल। हम स्वतंत्र हैं अपने आप में, इस बात को ध्यान नहीं रखते थे, इससे बड़ा आश्चर्य हो क्या सकता है इस जगत का। तो ये देख लीजिए तथाकथित जितने भी वैज्ञानिक है यहां पर मैं विविध प्रकार की योजनाएं बनाता है, हमें ये करना है ये करना है, लेकिन जीव भविष्य में क्या सदैव जीवित रहेंगे, कोई जीवित नहीं रहेगा। किंतु ये वैज्ञानिक लोग ये बहुत बड़ा प्लानिंग करते रहते हैं, बहुत बड़ा रिसर्च करते रहते हैं। ये कई वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो आत्मा को जानते हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक ऐसे जो आत्मा को नहीं जानते हैं, जिसको यहां पर मैं वैदिक जितने भी लिटरेचर्स हैं वो बताते हैं ये सब सारे के सारे नास्तिक है, जो आत्मा के फिलोसफी को नहीं जानते, उनके आत्मा की सत्ता को नहीं जानते, है ही नहीं आत्मा, तो ये लोग सारे के सारे नास्तिक हैं। तो जो ये वैज्ञानिक जो इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो इस आत्मा के ही बारे में शोध में लगा रहता है, जो आत्मा आखिर है कहां पे, इस जो बॉडी के अंदर में जो आत्मा है, जो ये है कहां पे, इसी शोध में लगा हुआ रहता है, और वो अपने को समझ माने मुझे भी मरना है सोच माने, तो ये सारे के सारे लोग मर रहे हैं, ये अभी इसका हस्बैंड मरा है, और ये सारी की सारी स्त्रियां इस युद्ध भूमि में पकड़ पकड़ के, पैर पकड़ करके, कोई शरीर को पकड़ करके रो रही हैं, और यमराज जी बालक का रूप लेकर के आ रहे करके, ये कितना बड़ा आश्चर्य है। अगला एक सेकंड के बाद ये स्त्रियां मर जाएंगी, लेकिन अपने मरण की इसको चिंता नहीं है, लेकिन इस शरीर को पकड़ कर रो रहा है, रो रहे हैं, तो कितना बड़ा आश्चर्य है। तो यहां पर मैंने बोल रहे हैं जो कितना बड़ा, इससे बड़ा आश्चर्य कोई हो सकता है क्या। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो कई सारे देश मिलकर के जो ये योजना बना रहे थे, शांति का प्रस्ताव रख रहे थे, जो हमें किस तरह से यहाँ पे शांति उपस्थित किया जाए, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध पूरे विश्व में फैल चुका था, हाहाकार मचा हुआ था पूरे विश्व में, कि जब ये योजना बन ही रही थी कि सेकेंड विश्व युद्ध हो गया। तो यहाँ के व्यक्ति की कोई योजना नहीं चलती है, सेकेंड विश्व युद्ध हो गया, अबे शांति की स्थापना करते करते कई तरह के संघ बनाए जाते ना, शांति स्थापना के, शांति शांति शांति, 10 लोग मिलकर के, 10 माने 10-50 राष्ट्र मिलकर के, राज्य मिलकर के शांति की स्थापना करता है, सोवियत संघ की स्थापना करता है, और फिर क्या बाद में होता है, वही लोग शांति का जो ढंढोरा पीटता रहता है, वही लोग किसी चीज की पैसे या किसी भी योजना को लेकर के बंटवारा करने में अशांति हो जाता है, अपने आप में झगड़ा कर लेता है। देखे है ना, 5 आदमी मिलकर के कोई योजना बनाता है, किसी मुद्दे पे बात करता है, और पैसे का कोई बात आ गया, उसमें जब बंटवारा हुआ, ठीक से बंटवारा नहीं हुआ, वही व्यक्ति जो शांति का प्रस्ताव अभी दे रहा था पूरा नगाड़ा बजा करके, वही व्यक्ति अपने आप में अशांति फैला देता है। तो ये सब सारी की सारी क्रियान्वित योजना है ना, वो सारी की सारी धरा रह जाएगा जब यमराज जी का समय आएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं व्यक्ति को ये जो आश्चर्य, ये जो जो यहाँ पे सृजित वस्तु को जो हम अपने देह को जो समझ लिए हैं ना, जब अपने शरीर को हम आत्मा समझ लिए हैं, इसमें से निकलने के लिए सबसे बड़ा जो टूल्स है भगवान के नाम का जप करना। अगर हम भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे ना तो फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। भगवान के भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हमारा फिर कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमें बड़ी ही व्यग्रता से जो है ना भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो कह रहे हैं इसमें अगला शब्द तत्र का परिदेवना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट श्लोक प्रयोग किया गया था भगवद गीता का 2.28 अव्यक्त क्या था, अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निदनान्य तत्र का परिवेदना। तो इसको समझा रहे हैं जो हम लोग क्या हैं, अव्यक्त थे पहले, हम लोग पहले अव्यक्त थे, बीच में कुछ समय के लिए व्यक्त हुए यानी कि प्रेजेंट हुए हैं, फिर बाद में अव्यक्त हो जाएंगे। तो कह रहे हैं तत्र का परिदेवना, मतलब जो आदि और अंत में नहीं था, यानी कि शुरू में हम नहीं थे फिर अंत में नहीं रहेंगे, यानी कि तो फिर बीच में भी नहीं है। ये फिलॉसफी है, ये सिद्धांत बनता है, जो शुरू में नहीं था जो अंत में नहीं रहेगा, तो बीच में अगर है भी तो उसको नहीं ही मानते। तो हम सब जो है शरीर लेकर के पहले तो हम अव्यक्त थे, भगवद गीता के 2.28 श्लोक, तो पहले हम अव्यक्त थे, अब हम व्यक्त हुए थोड़े समय के लिए और बाद में फिर से अव्यक्त हो जाएंगे, तो यानी कि हम है ही नहीं। तो इसका मतलब जब हम है ही नहीं तो ये शरीर में से आत्मा निकल भी गया तो इसके लिए शोक क्या करना, करें शोक इसलिए नहीं करना क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसको चला गया या प्रेजेंट है, तो दोनों ही अवस्था में मैंने क्या कहते हैं शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे सभी प्राणियां जो पहले शरीर नहीं थे और बाद में ये नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में ये बीच में भी नहीं रहेंगे, तो परंतु यह शरीर ही पहले भी था, लेकिन जो शरीर के अंदर में जो आत्मा है, तो आत्मा के बारे में बताया गया है जो ये पहले भी था आत्मा और अभी भी है आत्मा, और ये शरीर के खत्म हो जाने के बाद भी आत्मा है। तो ये दो जो अवस्था है, जो शरीर पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, बीच में थोड़े देर के लिए नहीं रहेगा, तो इसमें भी शोक नहीं करना। जो आत्मा पहले था अभी भी है जो बाद में भी रहेगा, तो इस दोनों अवस्था में शोक करने की तो कोई बात ही नहीं बनता। कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन 4.9 भगवत गीता। कह रहे जो जन्म कर्म, ये जो जन्म और कर्म की जो फिलॉसफी जो भगवान की समझ जाएगा ना जो व्यक्ति, तो फिर यहाँ पे धीर पुरुष जो है ना लोगों के शरीर को जो छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, तो इसमें मोह में नहीं फंस सकता। तो निष्कर्ष यही निकला, शरीरों का सदा अभाव है, जो शरीर का सदा अभाव है, लेकिन शरीरों का सदा अभाव है, शरीरी का कभी भी अभाव नहीं है, अतः दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। यही निष्कर्ष निकला ना इस बात से, जो व्यक्त या अव्यक्त से जो हम समझाते हैं। तो ये भागवतम में कई सारे श्लोक हैं, 11.24.17 भागवतम में, 11.28.18 में श्लोक है, 11.28.21 में भी ये श्लोक है, जो हम लोग पहले अव्यक्त थे, बीच में व्यक्त होते हैं, अब फिर बाद में अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये सब श्लोक लेने का तो हमारे पास टाइम नहीं रहा, अब हम तो पहले ही गवा दिए टाइम, तो इसलिए आप सब वैष्णव भक्तगण मुझे क्षमा कीजिएगा अगर कोई ऐसा वाणी का प्रयोग हो गया हो। वांछाकल्प तरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय।